بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. دیکھو، مجاہدہ پر بات چل رہی تھی، مجلس نمبر 26 تھی، اس میں بات آئی تھی کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے مخلوق کے سانس. جی، اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں. بیمار بیماری کے راستے سے جا سکتا ہے، تندرست تندرست کے راستے سے جا سکتا ہے. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اسی کا نام تو ہے دین، آسان ہے. الدین یسرن. دوسری بات بتایا، دین اتباع کا نام ہے، ماننے کا نام ہے. بس مان لو، شریعت کے خلاف حکم نہیں ہے تو اپنے بڑوں کی بات مان لو. سب سے پہلے تو ہمارے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے جو بات فرما دی ہے اس کو مان لینے کا نام، اللہ کے احکام کو مان لینے کا نام دین. اس کے بعد رسول، اس کے بعد وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ. پھر ایک بات بتائی، دو چیزیں اختیار کر لو، ایک اتباع اور دوسرا تفویض. اتباع اوامر اور نواہی میں، اور تفویض حالات پر صبر. ہاں، یہ دیکھو دین. تو پھر اس پر وہ عبداللہ بن مبارک اور لوہار کا قصہ بتایا تھا. تو یہ بات چل رہی تھی، اس کا قصہ تھا. اور حضرت نے ایک بات اور بتائی تھی، حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے، کہ حرم میں ایک آدمی نماز پڑھ کر اللہ تک پہنچتا ہے، ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر لیکن حسرت رکھتا ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے. تو اس پر بات چل رہی تھی، جسم وطن میں اور دل حرم میں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم ہندوستان میں ہو، کینیا میں ہو، یا دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہو، اور دل حرم شریف میں ہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ جسم حرم شریف میں ہو اور دل ہندوستان میں ہو، دل کینیا میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو. تو دیکھو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں. بعض لوگ وہاں بیٹھ کر اپنے اپنے ملک میں ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہاں پر ہوتے ہیں. ذرا سمجھو. تو یعنی جسم تو یہاں ہے اور دل میں خواہش ہو رہی کہ کاش ہم بھی حرمین شریفین کی نعمتوں سے بہراور ہو رہے ہوتے، فائدہ حاصل کر رہے ہوتے، کاش کہ ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی وہاں پہنچ جائے. یہ جذبہ، یہ خواہش، یہ حسرت، یہ تمنا دل میں ہے اور جسم اپنے وطن میں ہے. یہ صورت بہتر ہے اس سے کہ آدمی حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے وطن کو یاد کر رہا ہے. وہاں بیٹھ کر کیا کرتے، حرم میں ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور وطن میں فون کرتے ہیں، میں طواف کر رہا ہوں. ابھی تو اللہ کے گھر کے اندر جہاں اللہ کا تعلق لینے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کی ایک عبادت کرتے کرتے گھر پہ فون کر رہے. اب دیکھو ہے جسم وہاں پر اور فون کر رہا ہے وہاں پر. یہ تو گناہ بھی ہے کہ حرم کے وہ طواف کے درمیان میں فون کرنا، دوسرے لوگوں سے بات کرنا طواف کے درمیان میں، تو اللہ کو ڈھونڈنا ہے. ویسے بھی وہاں اپنی ہوٹل میں ہو، وہاں کہیں بھی ہو، لوگ وہاں بیٹھ کر اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں، اپنے وطن کی باتیں کرتے ہیں، وطن میں یہ کرتے. ارے وہاں بیٹھ کر سب سے رشتہ کاٹو، ایک اللہ سے جڑ جاؤ. جب وہاں کی 10 دن 15 دن کی جو مدت ختم، اب اپنے وطن میں جاؤ، پھر باتیں کرو. لیکن وہی تو ہوا کہ انسان عبادت کی نیت سے کم جا رہے ہیں، बस वक्त को गुजारना है, हमारे पास टाइम है और वहां जाते हैं। तो इसलिए एक आदमी है जो नहीं जा सकता है, लेकिन हसरत और तमन्ना है। एक आदमी गया है तो वहां की नेमत उसे फायदा हासिल करे, वहां बैठकर अपने वतन को याद न करे, वहां बैठकर अल्लाह को याद करे। कैसे अल्लाह मिल जाएगा, कौन सी दुआ से, कहाँ पढ़ने से, कौन सी जगह है, वहां जाकर उसको याद करे, सोचे, मुराकबे करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मेहनत को सोचे कि आपने कैसे यहां मेहनत की होंगी, कैसे घर घर जा रहे होंगे, ये सारी चीजों को सोचना। हजरत मौलाना बदरे आलम रहमतुल्लाह अलैह की हिजरत मदीना, हजरत मौलाना बदरे आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे बुजुर्गों में से गुजरे, ये हिजरत करके मदीना तैयबा चले गए। आजकल तो हिजरत करना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि आज लोग पैसे कमाने के लिए हिजरत करते हैं, क्योंकि वहां पैसे बहुत मिलते हैं। असल हिजरत तो उस जमाने की थी जब वहां पैसों का कोई मसला नहीं था, मदीना में और अरब में कोई पैसा नहीं था, कोई मसला नहीं था, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए हिजरत होती। बहरहाल आपने इस तरह हिजरत फरमाई कि एक अरसे तक वहां उस हाल में रहे, एक अरसे तक वहां उस हाल में रहे कि आपका कोई जरिया आमदनी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहां पर कुछ नहीं था। अकल हैरान होती है कि वो वक्त आपने किस तरह गुजारा होगा, जाहिर बात है कुछ भी नहीं। चुनांचे खुद अपना वाकया सुनाया करते थे, देखो उस वक्त तो पैसा भी नहीं था ये कौन वहां, आज तो जाओ तो कितना सदका खैरात होता है कि इंसान वैसे भी अपना पेट भर सके। उस वक्त में तो कुछ भी नहीं था वो, बल्कि बाहर से आने वाले लोग उन पर खर्च करते थे, ऐसी गरीबी थी सऊदीया में। चुनांचे खुद अपना वाकया सुनाया करते थे, जब मैं पहली मर्तबा मदीना मुनव्वरा गया तो वहां किसी से जान पहचान तो थी नहीं, एक कमरे में जो तंग और तारीक था, छोटा था और अंधेरा था। कयाम किया, वहां मुझे बुखार आ गया। अब वहां पर न कोई आने वाला, न जाने वाला, न मुझे कोई देखने वाला, जान पहचाने, न कोई आने वाला, न जाने वाला, न मुझे कोई देखने वाला, शदीद बुखार में मुब्तला। और 3 दिन मुझ पर इस तरह गुजरे कि एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं गया। 3 दिन इस तरह गुजरे कि एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं गया, शदीद बुखार की वजह से खुद उठकर भी हरम नहीं जा सकता। कमजोरी की वजह से वहां पर नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा था। 3 दिन के बाद एक शख्स मेरा नाम बदरे आलम पुकारता हुआ आया। अल्लाह, अपने साथ कुछ दवा और खाना भी लाया। हजरत मौलाना ने उस शख्स से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम बदरे आलम है और मैं यहां पर हूं। उस शख्स ने बताया कि मैंने एक ख्वाब देखा और ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बताया और कहा कि जाकर उनको देखो, वो फुला जगह पर बीमार पड़ा हुआ है और उसकी खबर गिरी करो। अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम अता फरमाया था। अल्लाह कबीर। कैसा मुजाहदा किया होगा। बहरहाल जब हजरत मौलाना बदरे आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा हिजरत कर गए, तो उनके पास हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह खत लिखा। इस खत में हजरत मुफ्ती साहब ने एक जुमला ये लिख दिया। कौन? मुफ्ती हसन साहब खत लिखा और उसमें एक जुमला लिख दिया कि आपको यहां की किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्ल मुझे इरशाद फरमा दें। देखो यहाँ की किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लु मुझे इरशाद फरमा दे, मैं वो चीज भेजने को अपनी सआदत समझूंगा। हजरत मौलाना बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह ने उनके इस जुमले के जवाब में लिखा, मदीना में रहते हुए खारिज मदीना की जरूरत, मदीना में रहते हुए मदीना के बाहर से मैं कोई मदद मांगू, अम्मा इलै कफला, यानी मैं मदीना में रहते हुए भी अब इस बात की फिक्र करूं कि फुला चीज फुला जगह मिलती है, ये चीज वहां से मंगवाऊ, इस बात को मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इस बात को मेरी गैरत गवारा नहीं करती। और अम्मा इलै कफला से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकई की तरफ इशारा फरमाया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि अगर मेरी जरूरत हो तो मैं कुछ मदद करूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, अम्मा इलै कफला, आपकी मुझे कोई जरूरत नहीं, हाँ मुझे अल्लाह जल्ल जलालों की रहमत और करम की जरूरत है, मैं इसका मोहताज हूं, उनकी जरूरत है, मैं इसका मोहताज हूं। इसी तरह हजरत मौलाना बद्र आलम साहब हजरत मुफ्ती साहब को जुमला लिख दिया। ये मौलाना बद्र आलम कौन है? जिनकी हिजबुल आजम हम पढ़ते हैं, मीरठ ही। मदीना जाओ फिर आओ, मदीना फिर जाओ, बहरहाल अगर मदीना में आदमी रहे और इस तरह रहे जिससे हजरत मौलाना बद्र आलम साहब रहते थे तब तो मजा है, तब तो मजा है। ये न हो कि रहे तो मदीना में और दिल लगा हुआ हो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, केनिया में, और उससे बेहतर यह है कि आदमी यहां पाकिस्तान में रहे और दिल मदीने की तरफ लगा रहे। अमीर मिनाई ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, मदीना जाओ फिर आओ, मदीना फिर जाओ, तमाम उम्र उसी में तमाम हो जाए, तमाम उम्र उसी में तमाम हो जाए। किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या आपने कहा कि मदीना जाओ फिर आओ, मदीना फिर जाओ, अरे वापस ही क्यों आओ, वही क्यों न रहो, रो पड़ू रह पड़ू। उन्होंने कहा कि मजा उसमें है कि मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, इसीलिए हजरत वाला फरमाते हैं कि ये सूरत बेहतर है उससे कि आदमी वहां रहे और यहां के बारे में सोचता रहे। हिम्मत को इस्तेमाल करें। इरशाद फरमाया, इख्तियारी उम्र में कोताही का इलाज, इख्तियारी जो हमारे हाथ में है कर सकते हैं उसको इख्तियारी उम्र में कोताही का इलाज बजुज हिम्मत और इस्तेमाल इख्तियार के कुछ नहीं, बजुज हिम्मत और इस्तेमाल इख्तियार के कुछ नहीं। इसी पर मदार है तमाम इस्लाहात का और यही है असल इलाज तमाम कोताहियों का। देखो इलाज हिम्मत है, हिम्मत होगी तो इंसान हर काम कर सकेगा, हिम्मत होगी तो फिर इंसान गुनाहों से बच सकेगा, आमाल कर सकेगा। आज लोग ये समझते हैं कि जब हम किसी शेख के पास जाएंगे, आज लोग ये समझते हैं कि हम जब किसी शेख के पास जाएंगे ना तो वो ऐसी नजर डालेगा या वो ऐसी फूंक मार देगा जिससे दिल चल जाएगा, दिल जारी हो जाएगा, मेरी गाड़ी चल पड़ेगी, सीधा जन्नत में जाके रुकूंगा। क्या बोलते हैं? बोले शेख साहब तुम ही ऐसी फूंक मार दोगे, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। तो फरमाया इसीलिए तो आते हैं कि ये फूंक मार देंगे या एक नजर डाल देंगे तो फिर हम सीधा जन्नत में जाके रुकेंगे, और दुनिया बदल जाएगी मेरी और हमारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। याद रखिए, ये सब वक्ती असरात से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, शेख की नजर से फायदा तो होगा और शेख की फूंक से दम करेंगे, फायदा तो होगा, लेकिन वो वक्ती होगा, वक्ती असरात से ज्यादा कुछ नहीं। हकीकत यह है कि अपनी हिम्मत को इस्तेमाल किए बगैर इस्लाह नहीं हो सकती। हिम्मत तो इस्तेमाल, अगर सिर्फ नजर डाल देने से और फूक मारने से काम चला करता तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद करने की जरूरत पेश न आती और किसी तबलीग और दावत की जरूरत न होती। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नजर डाल देते और लोग मुसलमान हो जाते, एक नजर डाल देते सब फतह हो जाता था। और आपकी नजर तो बड़ी पावरफुल थी जी, सब हो जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इससे पता चला कि तसर्रुफ, इसको कहते हैं, अब तसर्रुफ की बात चल रही है, तसर्रुफ करना और नजर डालना और फूंक मार देना ये मामूल के तरीके नहीं है। तसर्रुफ, तो अगर तसर्रुफ हकीकत में होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तसर्रुफ कर लेते थे कि आप नजर डालकर और आप एक फूक मारकर और सब मुसलमान हो जाते थे। फरमाया नहीं, तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता जो मेहनत करके इंसान तरक्की करता है वो हकीकत में होती है। तसर्रुफ कि अचानक किसी पर नजर पड़ी, कोई नेक बन गया, तो ये वक्ती चीज होती है, कभी कभी उसके असरात होते हैं। फिर उसके बाद अगर वो मेहनत करेगा, तसर्रुफ धक्का मारने के लिए होता है, उसके बाद उसकी अपनी मेहनत से उसको तरक्की होगी। लेकिन इसी को सिर्फ ये समझना कि बस मेरा काम बन गया तो फिर बाद में जाकर फिर गिर सकता है। तसर्रुफ की एक मिसाल समझो, अलबत्ता बाज औकात इन तसर्रुफात से फौरी और वक्ती असरात के जरिए इस्लाह हाल में कुछ मदद मिल जाती है। बाद मरतबा बाज अल्लाह वालों की अंदर का पावर बहुत कवी होता है, उनके सामने सिर्फ जाने से और एक नजर से देख लिया तो हमारी दिल की काया पलट जाती होता है, मदद मिल जाती। तो उससे क्या होता, आगे काम तो उसी को करना होगा, लेकिन ये सिर्फ मदद मिली, लेकिन इसकी वजह से हमेशा के लिए इंसान की काया नहीं पलट जाती। अगर किसी ने नजर डाल दी या कोई तसर्रुफ कर दिया तो उसके नतीजे में आदमी इस्लाह के रास्ते पर चलना शुरू तो कर देता है। उसका फायदा क्या हो कि इस्लाह के रास्ते पर चलना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए और मुस्तकिल चलते रहने के लिए अपनी हिम्मत ही को इस्तेमाल करना होगा। याद रखो, हिम्मत इस्तेमाल। इन तसर्रुफात की मिसाल ऐसी है जैसे मसलन गाड़ी का सेल्फ स्टार्टर खराब हो गया या गाड़ी की बैटरी कमजोर हो गई। अब उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही है ना? अब उसको धक्का लगाकर स्टार्ट करना होगा। चुनांचे धक्का लगाने के नतीजे में उसकी बैटरी में थोड़ी सी कुव्वत पैदा हो गई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब आगे वो अपनी बैटरी और इंजन की कुव्वत से चलेगी, लेकिन अगर बैटरी में और इंजन में जान ही नहीं है तो फिर कितने भी धक्के लगाते रहो वो गाड़ी चलकर नहीं देगी, गाड़ी चलकर नहीं देगी। तो ऐसे ही शेख क्या करता है, वो स्टार्टर का काम करता है, वो स्टार्ट कर दिया ना। हाँ, अब सामने वाला का दिल तो स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अब उसको चलने के लिए अब उसको एक ताकत अपने जिक्र अस्कार की लेनी पड़ेगी, तो उसकी बैटरी का चार्ज होती जाएगी बातें सुनने की, और ये अपने आप को कुछ तो कुछ करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि इसको धक्का दे दिया कि अब चलना है, अब दर्स को सुने, मजलिस में जाए, कुछ सवालत पूछे, कुछ हिम्मत करे, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये समझे कि नहीं, अब तो मैं बिल्कुल वो हो गया। तो तबलीग में क्या था, जो तबलीग में भी जो 3 दिन जो होता था ना, 3 दिन वो स्टार्ट करने के लिए होता था कि इसको एक स्टार्टर लगा दिया है, अब वो स्टार्ट हो गया, अब आगे 40 दिन की तौफीक, फिर ओलमा से मिलना, फिर मसाइल का सीखना, फिर इसलाह कराना, और फिर सब कुछ अपना सारा मामला सही करना, सब हो जाता तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन सब करना तो पड़ेगा उसी को। तो ऐसा है, इसलिए ये ना समझे कि भाई शेख से सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं करता, सब अल्लाह ही करते हैं। इसी तरह किसी बुजुर्ग का तसर्रुफ कर देना या तवज्जो डाल देना, ये दर हकीकत धक्का लगाना है। तवज्जो जो डाली जाती है ना, वो धक्का लगाना, उसके नतीजे में इंसान के अंदर कुछ निशात और जोश अमल पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ अमल करने की तौफीक हो जाती है, कुछ अमल करने की तौफीक हो जाती है, लेकिन आगे अमल को खुद ही जारी रखना होगा, आगे अमल को खुद ही जारी रखना होगा। ये नहीं हो सकता कि महज तसर्रुफ और तवज्जो के नतीजे में सारी जिंदगी अमल होता रहेगा, नहीं, बल्कि आगे अपने इख्तियार से ही अमल करना होगा। जी, तो देखो ये जो दर्स है ना, दर्स, ये सबक, ये भी एक धक्का मानने का है कि हमारे दिल में एक जज्बा पैदा हो जाए, बाकी काम तो करना पड़ेगा, आमाल करना पड़ेगा, गुनाहों से बचना पड़ेगा, मुराकबे करना पड़ेगा, हाँ ये सब कुछ करना पड़ेगा, मुजाहदा करना पड़ेगा। याद रखिए, कोताही और सुस्ती का इलाज बजुज इस्तेमाल हिम्मत के कुछ और नहीं, बस हिम्मत इस्तेमाल। किसी काम के करने से सुस्ती हो रही है, उसका रास्ता यह है कि अज्म और हिम्मत करके उस सुस्ती का मुकाबला करें, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई शख्स ये चाहे कि सुस्ती के इलाज के लिए कोई नुस्खा घोल कर पिला दिया जाए, हाँ कोई नुस्खा, कोई दवा पिला दी जाए, तो ऐसा कोई नुस्खा आज तक मौजूद नहीं आया है, किसी केमिस्ट में आपको नहीं मिलेगा। जी, कि भाई कोई ऐसा चीज हो जो हमें पिला दो, तो और अगर ऐसा अगर बना भी देवे ना, तो बहुत जल्दी बिक भी सकता है, बहुत पैसा मिलेगा इसमें, लेकिन हो ही नहीं सकता तो क्या करें, क्योंकि वो तो कहेंगे ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, फिर इसमें तो मुंह मांगी कीमत देंगे, बोले ले लो, मेरा काम तो बन जाएगा सीधा जन्नत में, क्योंकि तो जन्नत मिल गई। नहीं, ऐसा कोई नुस्खा नहीं है, मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी। कोई नुस्खा घोल कर पिला दे, तो ऐसा कोई नुस्खा आज तक मौजूद नहीं आया। लोग पूछते रहते हैं कि हजरत नमाज में बड़ी कोताही, सुस्ती हो जाती है, उसके लिए कोई वजीफा बता दीजिए। लोग पूछते रहते हैं कि नमाज में बड़ी कोताही और सुस्ती हो जाती है, उसके लिए कोई वजीफा बता दीजिए। अरे भाई, इसके लिए सबसे बड़ा वजीफा यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हिम्मत दी है, इस हिम्मत को इस्तेमाल करो। जब इस हिम्मत को इस्तेमाल करोगे, तब तुम्हारा काम बनेगा। झाड़ फूंक से ये काम नहीं बना करता, हिम्मत से काम बनता है कि चलो उसका कुछ नहीं, फिर वो वजीफे के लिए वजीफे की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बहुत सारे लोग, क्योंकि वजीफे की आदत बहुत हो गई ना सबको, बोले कुछ पढ़ने को दे दो ताकि मेरी सुस्ती चली जाए, यहाँ कुछ नहीं है। देखो हजरत ने कोई बताया, और आज जब भी देखो तो कोई वजीफा बताओ, हर एक ये पूछेगा, गुना मेरे से नहीं छूट रहे तो मुझे कोई वजीफा बताओ, मेरा गुना छूट जाए। तो मैंने कहा वजीफा तो तुम वैसे ही पढ़ रहे हो, गुना क्यों नहीं छूट रहा, तो मैं और बताऊंगा तो कैसे छूटेगा। नहीं, वो पढ़ने की आदत है ना, तो जरा ईमान, इसको सुकून होता है, नफ्स भी कहता है देख तू पढ़ रहा है ना, वो तेरा काम बन जाएगा, तू फिक्र नहीं कर। नहीं, इससे नहीं, हिम्मत से काम लो, अमल आया है, अब हिम्मत से काम करो। कोई भी अल्लाह का हुक्म आया, नमाज का वक्त है तो नमाज, जहां झुकने का वक्त है वहां झुक जाओ, जहां हुस्ने जन करना है वहां हुस्ने जन करो, हसद से बचना है वहां बचो, हिम्मत से काम करो, फ्लेक्सिबल रहे, जिस वक्त में जो काम करना है उस वक्त में वो काम करने में कोई आड़ ना हो। कोई मुश्किल ना हो। जब ये थोड़े दिन के लिए, उसके बाद हिम्मत चल पड़ती है तो इंसान फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा ठीक है ऐसा करो, अच्छा ठीक है ऐसा करो। तो फरमाया इंसान की हिम्मत में ताकत, अल्लाह ताला ने इंसान की हिम्मत में बड़ी ताकत रखी, हिम्मत में इतनी ताकत रखी है कोई कोई हद्दो हिसाब नहीं। हिम्मत में ताकत है, याद रखो। अल्लाह ताला इस हिम्मत के जरिए बड़े बड़े काम करा देते। अभी हिम्मत जो है ना हमारी, वही कमजोर हो गई है। इस हिम्मत को कमजोर एक तो वसाविस ने कर दिया है। वसाविस से इंसान बड़ा कमजोर हो जाता है, उसकी हिम्मत ही कमजोर। बोले क्या फायदा तेरे को, ये हो। तो इंसान या तो अमल करके, या तो गुनाहों की वजह से हिम्मत कम हो जाती, या वसाविस की वजह से हो जाती। तो उसके लिए जो इंसान कोई रहबर पकड़ता है, अल्लाह वाले से कोई ताल्लुक रखता है, तो फिर उसके बाद उसके अंदर फिर दोबारा वही हिम्मत आ जाती है जो उसके पहले थी। हाँ यही तो फायदा होता है कि वो हिम्मत को खल, और फिर हिम्मत जब आ गई तो फिर तो उसमें ताकत बहुत जबरदस्त है। फिर तो बाज मरतबा वो शेख से भी आगे निकल जाता है। हाँ ऐसे ऐसे आगे निकल जाता है। अल्लाह उससे खूब काम लेते हैं, किसी की क्या क्या सलाहियतें होती है जी, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो फरमाए, इसलिए फरमाए हिम्मत में इतनी ताकत है कि उसका कोई हद तो हिसाब नहीं। अल्लाह ताला इस हिम्मत के जरिए बड़े बड़े काम करा देते जो इंसान के तस्वुर में नहीं आ सकते। इस हिम्मत के नतीजे में इंसान चांद तक पहुंच गया, वरना पहले चांद पर जाने को नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन जब हिम्मत की तो पहुंच गया। लिहाजा जब हिम्मत करके इंसान चांद पर पहुंच सकता है, तो अपने नफ्स पर क्यों काबू नहीं पा सकता अगर काबू करना चाहे। मेरा एक शेर है, कमंदे डाल रखी है मेरी हिम्मत ने तारों पर, कमंदे डाल रखी है मेरी हिम्मत ने तारों पर, मगर अब तक दिल नादा की नादानी नहीं जाती। हिम्मत तो इतनी है हाँ कि तारों तक पहुंच गया है, लेकिन दिल इतना करीब है, यानी हिम्मत तो इतनी कि इतना दूर पहुंच गया और दिल उससे ज्यादा करीब है, लेकिन दिल की नादानी अभी तक नहीं गई। ये वो दूर है तो वहां तो पहुंच गया, लेकिन वो करीब है उसमें हिम्मत नहीं। इसलिए फरमाया कमंदे डाल रखी है मेरी हिम्मत ने तारों पर, कितना दूर है मगर अब तक दिल नादा की नादानी नहीं जाती। दिल बदला ही नहीं, यानी हिम्मत ने तो तारों पर कमंदे डाल रखी है, और चांद पर और मिर्रिख पर और जोहरा पर पहुंच गया, मगर इस दिल पर अब तक काबू नहीं पाया जाता। लिहाजा जब इंसान इन चीजों पर काबू पा सकता है, तो इस नफ्स और दिल पर काबू क्यों नहीं पा सकता। बस इंसान उसका मुराकबा करे, मुराकबा करे और अपनी हिम्मत को ताजा करे, यही रास्ता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें हिम्मत अता फरमाए और हमारे आमाल और अखलाक की इसलाह फरमाए जी। तो देखो अभी आगे हजरत वाला का जुमला, यानी हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है, तसर्रुफ की हकीकत। हजरत वाला का इरशाद है, अगर ये ख्याल हो, अगर ये ख्याल हो कि बाज बुजुर्गों की तवज्जो से बड़े बड़े बदकारों की खुद बखुद इसलाह हो गई है, बड़े बड़े बुरों की खुद बखुद इसलाह हो गई है, तो ये एक किस्म का तसर्रुफ है, और ऐसा तसरुफ न इख्तियारी है न बुजुर्गी के लिए लाजिम है। तो ऐसा तसरुफ अगर किसी बुजुर्ग की नजर से किसी की इसलाह हो गई है, तो इस कसम का तसरुफ है, और ऐसा तसरुफ न इख्तियारी, यानी इंसान खुद नहीं कर सकता, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है, और न बुजुर्ग के लिए लाजिम। और एक तसरुफ कोई बुजुर्ग नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए लाजिम भी नहीं। ये ना समझे कि बुजुर्ग है ही नहीं, इसने तो कुछ नहीं किया, और उसने तो देखो कैसे कैसे लोगों को पलटी कर दिया। हाँ क्योंकि आजकल तो हम लोग किसको बुजुर्ग समझते, जरा किसी ने किसी की नजर पड़ गई किसी पर और उसकी जिंदगी में, बोला हाँ इसको कहते हैं ये सच्चा अल्लाह वाला, तो फिर वो झूठा है फिर। हाँ लोग कहते हैं बोले ये सच्चा अल्लाह वाला है। तो इसलिए हजरत ने फरमाया कि बुजुर्ग के लिए ये लाजिम नहीं है। हाँ किसी से कुछ हो गया है, वो उसके इख्तियार में नहीं था, अल्लाह ने नेमत दी और हो गया, आगे सुनो, जैसा कि पहले अर्ज किया था इसी का तर्जमा कि इंसान को अमल करने के लिए अपनी हिम्मत को और अपने इरादे और इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। ये जो तस्वुर है हमारे जहनों में कि जब हम किसी शेख के पास जाएंगे तो वह ऐसी निगाह डाल देगा कि उसके नतीजे में हमारी जिंदगी की काया पलट जाएगी। रूम भी बंद करो। जी, अपनी हिम्मत को और अपने इरादे को और इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये जो तस्वुर है कि जब किसी शेख के पास जाएंगे तो ऐसी निगाह डाल देगा कि उसके नतीजे में हमारी जिंदगी की पाया पलट जाए काया पलट जाएगी, ये बात इस उमूम के साथ दुरुस्त नहीं, ये दुरुस्त नहीं। हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह का वाकया, अलबत्ता दिल में ख्याल आता है कि बाद बुजुर्गों के वाकयात ऐसे मिलते हैं कि बड़े बड़े बदकार लोग उनके पास पहुंचे, उन बुजुर्ग ने उन पर तवज्जो डाली, उसके नतीजे में उन बदकारों की इसलाह हो गई। ये वाकयात मिलते हैं, लेकिन ये होना हर एक बुजुर्ग में जरूरी नहीं है। ये अल्लाह की किसी को देते हैं किसी को नहीं मिलता, लेकिन ये नुक्स की अलामत नहीं है। मसलन हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह वैसे ही जंगल में आवारा फिरा करते थे, जंगल में आवारा फिर रहे थे, बचपन ही से शेर बहुत कहते थे। उनके वालिद हजरत नजमुद्दीन सुगरा रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। एक मर्तबा हजरत नजमुद्दीन सुगरा रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद के घर आए, अपने मुरीद यानी इनके वालिद के पास आए, हाफिज शिराजी के वालिद के पास आए, अपने मुरीद के घर आए तो उन्होंने अपनी सारी औलाद को हजरत के सामने पेश किया। अब जाहिर बात है बाप जब बुजुर्गों को बुलाता है तो औलाद को भी सामने बिठाता है कि भाई इनके लिए दुआ कर दीजिए और नजर डाल दीजिए, होता है। सारी औलाद को हजरत के सामने पेश किया, उनके लिए दुआ कराई तो हजरत नजमुद्दीन सुगरा रहमतुल्लाह अलैह ने सबके सरों पर हाथ फेरा और सबको दुआई दी। हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में आवारा फिरा करते थे। हजरत नजमुद्दीन सुगरा रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, देखो सारे लड़के थे ये तो आवारा फिर रहे थे, ये तो थे भी नहीं उधर, ये तो थे भी नहीं, दूसरे लड़के थे, सबके सरों पर हाथ फेरा दुआई की, लेकिन हजरत नजमुद्दीन सुगरा रहमतुल्लाह ने पूछा कि तुम्हारा एक लड़का और भी तो है वो कहाँ है, इन्होंने पूछा। उनके वालिद ने कहा वो तो कहीं जंगल में आवारा फिर रहा होगा। आपने फरमाया कि उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ। उनके वालिद ने एक आदमी भेजा, ये जंगल में फिर रहे थे, उसने जाकर उनको पकड़ा, उनसे कहा तुम्हारे वालिद बुला रहे, शायद ये भी बता दिया कि एक बुजुर्ग आए हुए हैं, उनसे तुम्हारे लिए दुआ करानी है। तो ये सुनकर हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कासिद के हमरा चलाए, अब वो जो बुलाने गया था उसके साथ साथ चले आए। जब घर में दाखिल हुए और देखा कि शेख नजमुद्दीन सुगरा रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं तो उनको देखकर ये शेर पढ़ा, शायर तो थे ही, आना के खा करा ब नजर की मियां कुनन, आना के खा करा ब नजर की मियां कुनन, आया बुत के गोशे चश्मे बिमा कुनन बिमा कुनन, आया बुत के गोशे चश्मे बिमा कुनन। वो लोग जो अपने एक नजर से, वो लोग जो अपनी एक नजर से मिट्टी को किमिया बना देते, किमिया माना सोना कीमती, मिट्टी को एक नजर डाले किमिया बना देते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक सरसरी सी नजर हमारे ऊपर भी डाल दे और हम भी किमिया बन जाए, हम भी तो मिट्टी है ना, गंदे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो अपनी एक नजर से मिट्टी पर नजर डालते तो वो सोना बन जाते, तो क्या तुम एक सरसरी नजर मेरे ऊपर भी डाल दे डाल सकते हैं कि मैं भी कीमती। शेख ने वहीं बैठे बैठे जवाब में फरमाया, नजर कर दम नजर कर दम नजर कर दम, शेख ने फरमाया फरमाया बस हमने एक नजर डालना था, हमने नजर कर दी, हमने नजर कर दी, हमने नजर कर, बस एक नजर डालना था कि अल्लाह ताला उसकी बरकत से उस साहबजादे को जो जंगल और बाजारों में आवारा घूम रहा था कहां से कहां पहुंचा दिया। और अब ऊंचे दर्जे की सूफिया किराम में उनका शुमार होता था, बड़े सूफी बन गए लोग। कहां जिंदगी थी और कहां से उठाकर कहां बना दिया, ओ कहां पहुंच। अब ऊंचे दर्जे की सूफिया किराम उनका शो, उनकी सारी शायरी तसव्वुफ में डूबी हुई है। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग ने उनके दीवान की शरह इरफान हाफिज के नाम से लिखी है, उनके दीवान का नाम है दीवान हाफिज है जी, दीवान कहते हैं जिसमें अशआर बहुत सारे जमा हो। अल्लाह, तो ये तसर्रुफ जो है ना वो इख्तियारी नहीं। अब ये जो कुछ हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ, बजाहिर तो ये हुआ कि हजरत नजमुद्दीन सुगरा रहमतुल्लाह अलैह ने एक निगाह डाल दी और उसके जरिए अल्लाह ताला ने इनकलाब बर्पा कर दिया, है कि नहीं। चुनाचे आज भी लोगों की तमन्ना होती है कि हमें भी ऐसा ही कोई निगाह डालने वाला, कोई तसर्रुफ करने वाला मिल जाए तो उससे हमारा काम बन जाए। तो उसके जवाब में हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, हजरत थानवी की इबारत फरमा रहे हैं कि अगर ये ख्याल हो कि बाज बुजुर्गों की तवज्जो से बड़े बड़े बदकारों की खुद ब खुद इसलाह हो गई तो ये एक किस्म का तसर्रुफ है, यानी किसी बुजुर्ग ने अगर ऐसा किया तो ये महज तसर्रुफ ख्याली है, और ऐसा तसरुफ न इख्तियारी है न बुजुर्गी के लिए लाजिम है, यानी किसी बुजुर्ग के इख्तियार में नहीं होता कि वो जब चाहे ऐसा तसरुफ कर दे, या इस तसरुफ करने का कोई खास तरीका हो, या कस्ब के जरिए फन और मलका हासिल हो जाए, यानी इंसान इसकी पढ़ाई करे और उसकी कोई डिग्री ले, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये कस्ब के जरिए फन और ये मलका हासिल हो जाए, फिर जब चाहे जिस पर चाहे तसर्रुफ करके उसके हालात बदल दे, याद रखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जिस बुजुर्ग से हुआ तो वो भी हर हर वक्त नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, नजर करदम हो गया, हर एक के साथ थोड़ी होता है। हाँ वो हो गया, वो अल्लाह की तरफ से एक अजीब चीज होती है, तो इसलिए फरमाया ये तसर्रुफ है, उसको कहते हैं तसर्रुफ। और ये ऐसी चीज नहीं है कि उसको कहीं से हासिल किया जाए या किसी बुजुर्ग की सोबत में बैठे तो चलो ये चीज हमें मिल जाएगी, नहीं, बल्कि ये तसर्रुफ करना और उसको हासिल करना किसी के इख्तियार में नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से देन होती है, जिसको चाहते हैं अता फरमा देते हैं, और उस वक्त अता फरमाते जब अपने किसी खास बंदे को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। जैसे कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाहु यजतबी इलैही मन यशा व यहदी इलैही मन युनीब, यह है, यानी अल्लाह ताला किसी बंदे को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो किसी बुजुर्ग को जरिया बना देते हैं। तो हकीकत में कोई गुनेगार था और वो नेक बन गया, तो हकीकत में तो अल्लाह ने बनाया और उसकी वो हिदायत की घड़ी लिखी हुई थी, लेकिन जरिया किसी अल्लाह वाले को बना दिया। अब लोग क्या कहते, ओ ये अल्लाह वाला बड़ा है, अरे बाबा अल्लाह ने बनाया है लेकिन अल्लाह ने इसको जरिया बनाया, तो ये याद रखो। देखो यहां यकीन बहुत फासिद हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम कहते हैं ना भाई अल्लाह करता है, अल्लाह करता है, तो हकीकत में अल्लाह ही ने किया और उसकी हिदायत की घड़ी लिखी हुई थी और नजर पड़ गई किसी बुजुर्ग की, तो उसका नजर पड़ना था, इसकी हिदायत लिखनी थी, बल्कि इसकी हिदायत इनकी नजर में लिखी हुई थी। तो अल्लाह ताला ही करते हैं, असबाब दुनिया का कोई ना कोई होता है, जरिया कुछ न कुछ होता है। तो उसकी निगाह में, उसके ख्यालात में तासुर पैदा फरमा देते हैं, तो अब वो अल्लाह वालों की निगाह में ऐसा तासुर पैदा फरमा देते हैं कि असल में तो किया है अल्लाह ने, लेकिन इस बुजुर्ग की नजर से करा दिया। तो अब ये ख्यालत डाला किसने, अल्लाह ने। फिर इस ख्यालत में तासुर किसने डाला, अल्लाह ने, अल्लाह ही डालते हैं। तो सब कुछ अल्लाह ने किया, जरिया ये, और हम क्या देखते हैं, ओ ये अल्लाह वाले ने किया, हमारा ईमान खराब, नहीं, ये जरिया बने। अगर इन्होंने किया होता तो अच्छा दूसरा आदमी ला के डाल दो, अच्छा इसको भी करके दिखा दो जरा, तो नहीं होगा, नहीं होगा, आप देख लो, आप तीसरे को ला के डाल दो, क्योंकि जिसकी हिदायत लिखी होती है उसका अल्लाह अजीब इंतजाम करते हैं, उसको अल्लाह वाले के पास भेज भी देते हैं, अल्लाह वाले से ऐसे जुमले निकाल भी देते हैं, उसकी काया उसके दिल को पलट भी देते हैं। अल्लाह ताला एक सारा प्रोग्राम बनाते हैं जो हमारे सामने होते हैं, अल्लाह गैब में होते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। किया अल्लाह ने है लेकिन नजर आ रहा है चीजों में, इसलिए तो फरमाया ईमान चीजों से नजर हटाना और जो नजर नहीं आ रहा है, जो करने वाला है उस पर नजर को जमाना। तो वरना खुद से उन बुजुर्ग के अंदर ये ताकत नहीं कि अपने अंदर तसर्रुफ का मलका पैदा करे। लिहाजा असल में तो तसर्रुफ करने वाले अल्लाह ताला है। हाँ, इसलिए फरमाया अल्लाहु यज्तबी, अल्लाह जिसको चाहता है चुनता है। बाज मरतबा अल्लाह ताला ने किसी की सलाहियत ऐसी रखी है, अब उसकी जिंदगी बजाहिर गुनाहों में है, अब अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया है कि नहीं अब मुझे उससे दीन की जिंदगी, दीन का काम लेना है, अब उसको चुन लिया, अल्लाह वालों के पास भेज दिया, उनके पास में रहा, उनकी नजर से अल्लाह ताला ने उसको कहां से कहां पहुंचा। तो एक प्रोग्राम होता है, ये सब अचानक नहीं होता है। तो फरमाया तसरुफ का मलका, लिहाजा असल में तो तसरुफ करने वाले अल्लाह ताला है, अलबत्ता बुजुर्ग को जरिया और वास्ता बना देते हैं, इसलिए ये तसरुफ इख्तियारी नहीं है, इख्तियारी नहीं है। इसलिए याद रखे करामत होता है ना, तो ये बुजुर्ग के हाथ में नहीं होता, अल्लाह ताला उनसे ऐसा करा देते हैं, और कराने से किसी की हिदायत लिखी होती है। अगर अल्लाह वालों के हाथ में करामत होती तो हर जगह करामत दिखाते, हर जगह मत नहीं होती, यही तो करामत है कि किसी पर नजर पड़ी और वो सुधर गया तो इसको करामत कहते। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ना, वो अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, किसी अल्लाह वाले से करा देते। तो तसर्रुफ जो है बुजुर्गी के लिए लाजिम नहीं है। 45 हो गए, इंशाल्लाह दूसरी बातें कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज समझ में आ गया तसर्रुफ, हकीकत में आज का सबक जो था ना वो तसर्रुफ पढ़ते हैं। तसर्रुफ किसको कहते हैं? तो इसलिए ये बात भी देखो, हमारे जहनों में बहुत गलत फहमियां होती है, याद रखो अल्लाह वालों को इस तरीके से न पहचानोगे किस अल्लाह वाले से क्या क्या करामतें और किसको हिदायत मिली है। अल्लाह वालों की पहचान उनकी जिंदगी में सुन्नत है या नहीं, उनकी जबान पर अल्लाह की बातें है या नहीं, उनके पास बैठने से दिल नरम होता है या नहीं, बस ये अलामतें अल्लाह वालों में देख लो और उसी के पास बैठना शुरू कर। ये मत देखो कि कौन कितना और कितनी इसके जरिए से कौन से अजीब अजीब काम हुए। आज लोग अजीब अजीब चीजें देखते कि नजर पड़ते ही कोई बिल्डिंग बन गई, नजर पड़ते ही कोई बिल्डिंग टूट गई, ऐसा नहीं। ठीक है, थोड़ी देर मुराकबा कर ले, आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले और ये तसव्वुर करे कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत और सियाही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। हमारा ध्यान दिल की तरफ हो और दिल की हरकत को सुनने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह न जबान से कहना है न दिमाग में कहना है, ये जो मैं कह रहा हूं उसको सिर्फ तवज्जो देना है दिल की तरफ कि मेरे दिल की तरफ ये लग रहा है। जितना जितना दिल की तरफ ध्यान होगा उतनी दिल की हरकत समझ में आएगी।